ओम शांति। मधुबन में आना, भट्टी करना, ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य की निशानी है। अभी सब ध्यान से सुनेंगे, जो लिफाफे आदि ये करना तो पहले कर लो, फिर बाद में मैं बात करेंगे, है ना? ठीक है, सबको जो कुछ करना कर लो, एकदम ठीक हो करके बैठो। सब ठीक है? हाथ खड़ा करो, बाबा को बोलो फ्रेश। अच्छा ठीक है, शुरू करो बोलना है। ओम शांति। मधुबन हम सबकी बहुत ही प्यारी भूमि है और मधुबन के लिए सबको बहुत प्यार भी रहता है और अट्रैक्शन भी रहता है। हर समय कहेंगे मधुबन चलना है, मधुबन चलना है और मधुबन जाना है, ना? ऐसे होता है ना। अभी शांति वन में प्रोग्राम्स होते हैं, फिर मधुबन में चारों धाम की यात्रा करने आते हैं। लेकिन यहाँ मधुबन में आकर के 5 दिन रहना, 1 दिन आना, 3 दिन रहना, 5वें दिन जाना, ये जो भाग्य मिलता है ये बहुत बड़ा सौभाग्य की निशानी है। तो जो आप सभी को न मन न चित, सोनीपत वालों को भाग्य मिला है ना। सोचा था कि हमको भट्टी का चांस मिलेगा, सोनीपत के साथ और भी कुछ टीचर्स बहने हैं उनको भी चांस मिल गया। आपको पता है सोनीपत को बाबा बहुत प्यार करते थे और सोनीपत का नाम बाबा ने क्या रखा हुआ था? हैं? पक्का? मुझे मालूम है, ये पक्का, मैं यही पूछ रही हूँ। हैं? पक्का? सोनपुट समझते हैं? सोन ये सिंधी में है, सोन मीन्स सोना, सुंदर, बहुत अच्छे, पुट मीन्स बच्चे हैं। बाबा हमेशा बहुत प्यार करते थे। बाबा कहते मेरे सोनपुट बच्चे आ गए। ये नशा रहता है, जिसको बाबा ने याद किया हो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। आपको बाबा ने किया, आपने तो दादियों को भी नहीं देखा है, मनोहर दादी को किसने देखा? थोड़ो ने, और चंद्रमणि दादी को 2-4 ने, और इसके बाद दादी जान की गुलजार दादी को तो देखा ही है ना, सबको देखा, गुलजार दादी, बड़ी दादी को सबने देखा है। तो देखो सोनीपत की बहुत विशेषताएं रही हैं। एक तो बाबा हमेशा जब सोनीपत से माताएं आती थी ना, सोनीपत, रोहतक और इधर से माताएं आती थी, वो सब के सब हरियाणवी भाषा में बात करती थी। अब बाबा के पास आते थे और बाबा के प्यार में इतना खो जाती थी, और बीच में बाबा और वो माताएं सब की सब गोल गोल चक्कर लगा करके बाबा के सामने हरियाणवी भाषा में गीत गाते थे। बाबा कहते थे ये बाबा के प्यारे और बहुत ही लाडले हैं। और बहुत प्यारी माताएं थी, क्योंकि हमने तो सबको देखा हुआ है और अच्छी तरह से जानते भी हैं। तो सोनीपत की धरनी की भी बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। अब मधुबन में जब शुरू में बाबा के टाइम आते थे, बाबा तो बच्चों को बहुत प्यार भी करते थे, प्यार के साथ साथ भरपूर भी करते थे। अब यहाँ जो भट्टी में आए हैं, तो हमारा पहला लक्ष्य ये रहे, ये पहली अनुभूति ये रहे कि हम बाबा के लाडले बच्चे हैं। लाडले बच्चे, जो लाडले बच्चे हाथ खड़ा करें। फिर बाबा के सोनपुट है, सोनपुट मीन्स सोन मीन्स प्योर, है ना? कोई बाबा ने उस दिन भी मुरली में क्या बताया कि प्योरिटी का अर्थ है संबंध, संकल्प, कर्म में भी हम रहे हैं। कर्म में तो आ गए, लेकिन संकल्प और संबंध में भी हमारे शुभ भावना और कल्याण की भावना रहे। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, हम बाबा के लाडले और सोनपुत्र हैं। और तीसरी बात कि हम कितने सौभाग्यशाली। अच्छा, सौभाग्यशाली है ना कि नहीं? जो कहते हम सौभाग्यशाली, हाथ खड़ा करो। इससे आगे नहीं बढ़ोगे क्या? बोलो ना, हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, हो ना? पद्मा पदम भाग्यशाली। बाबा हमेशा कहते थे कि बच्चों ने बाप को पहचाना तो बच्चों का भाग्य एक सितारे की तरह चमका। और फिर बाबा जो है बच्चों को इतने वरदान देते हैं, उस वरदानों से हमारा भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो गया। फिर हम सब बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो हम क्या बन गए, पद्मा पदम भाग्यशाली बन गए। तो बाबा के पास जब आते थे तो मधुबन एक ऐसा स्थान है जो हमको एकदम दर्पण की तरह दिखाई देता। दर्पण कैसे, जैसे दर्पण में अपना आईना देखते हैं तो हर चीज स्पष्ट दिखाई देती है। तो बाबा ने कहा है कि हम दर्पण जैसा कैसे बन सकते हैं, जब पहले हम अपने संकल्पों को बाबा के सामने अर्पण करते हैं। क्योंकि हमारे संकल्प क्या आते हैं, मैं पुरुषार्थ नहीं कर सकता हूँ, हम बहुत पीछे आए हैं, हमने तो बाबा को देखा नहीं है, बाबा की कहानियाँ सुनी हैं, बाबा के चरित्र सुने हैं, दादियों के साथ के अनुभव सुने हैं। ये जो संकल्प आता है तो वो हमको पुरुषार्थ में बाधा डालता है। अच्छा, बाबा की थी किसने नहीं देखा, सबने बाबा को देखा, देखा कि नहीं, जिसने बाबा को देखा हाथ खड़ा करो। देखा कहाँ देखा है, चित्र में देखा है, कहाँ देखा। लेकिन नहीं, बाबा हर समय जब आप योग में बैठते हैं ना, बाबा उस समय बच्चों के सामने आ जाते। अब बाबा ने कहा है कि जब तक बच्चे तैयार नहीं होते हैं, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ वहां पर राज्य करेंगे, तो बाबा हमारे साथ है और बाबा हमारे सामने सूक्ष्म रीति से आते हैं और बच्चों को भरपूर करते। कई बार होता है ना, रात को देखते बाबा आते, फटाफट सिर पे हाथ लगते बच्चे, फिर बाबा ऐसे सिर पे हाथ रखते हैं, बहुत प्यार से करते हैं। तो बाबा की ये जो वरदान है, ये बाबा के हमारे सिर के ऊपर ये एकदम हाथ की तरह है। जैसे आप देखते मिलिट्री में कोई व्यक्ति होता है, अच्छा उसको एक मेडल होता है तो वो लगा होता है, किसी के दो मेडल होते हैं, किसके तीन होते हैं, किसके चार होते हैं। आपके कितने मेडल हैं, याद है कितने है? आप अपनी एंजेलिक ड्रेस को देखो, उसमें चमकते हुए सितारे देखो। बाबा के बच्चों का क्या होता है, जन्म लिया तो पहले बाबा ने वरदान दे दिया, नूर रतन है, विश्व परिवर्तक है, विश्व कल्याणकारी है, विश्व के लिए कितने टाइटल दे दिए। अभी ज्ञान समझा ही नहीं है, बाबा के पास आए ही हैं, ज्ञान समझा नहीं, पहले बाबा ने टाइटल से भरपूर किया। लौकिक में कोई बैरिस्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, पहले वो पढ़ाई करता है, पढ़ाई के बाद जाके प्रैक्टिस करता है, तब जाके बनता है। और बाबा के बच्चे कैसे है? ना बिना मेहनत, बिना पढ़ाई, समझा ही नहीं है ज्ञान, और जाकर के बन गए हैं विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी। और बाबा कहते होमनहार विश्व के विश्व महाराजन। ऐसा देखा महाराजन, कोई भी महाराजन ऐसा नहीं होगा, महाराणा, महाराजा और महारानी। अच्छा, बाबा के पास जब आते थे ना, ग्रुप आते थे उस समय, तो बाबा के टाइम पर मुख्य सेंटर थोड़े थोड़े थे। एक तो था जयपुर अजमेर के अंदर था, फिर उसके बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद फिर हरियाणा और पंजाब में, हरियाणा में सोनीपत, पानीपत, और फिर आगे बढ़ते करनाल, करनाल के बाद अम्बाला, अम्बाला चंडीगढ़, और आगे बढ़ते हुए। तो बाबा के टाइम पर जब आते थे, तो बाबा के समय पर जब बच्चे आते थे तो वो सब के सब जमीन पे सोते थे। उस समय बाबा कहते थे मेरे पटरानी आ गई। तो अभी आप बताओ, पटरानिया हो या पटराजे हो, है क्या हो? अभी तो खटिया मिलती है, पलंग मिलता है, बेड। हम लोग जब आते थे ना, अपने साथ बहुत बड़ा बिस्तर लेके आते थे, एक गोल गोल बिस्तर मिलता था जिसके अंदर बिस्तर रजाई डाल के आते थे, और अपना ही सब बिछाते थे, सब नीचे सोते थे। और बाबा हमेशा रोज रात को चक्कर लगाते थे, बाबा कहते थे मेरे पट राजा और पट रानी आ गए। और अभी क्या कहेंगे, खट राजा बोलेंगे? बोलो, दिल तख्त नशीन बच्चे हैं, क्या बोलोगे अभी हैं? दिल तख्त नशीन बच्चे हैं, विश्व महाराजा ने सोफे पे बैठ के पढ़ते हैं। प्रिंस कॉलेज में चले जाओ तो कहाँ बैठते हैं, सोफे पे बैठ के पढ़ते हैं ना, आपको तो पहले से सोफा दे दिया। फिर जब सोफे पे बैठते हैं ना, फिर क्या होता है, कभी कभी सुस्ती आ जाती है, आज भी बाबा ने कहा ना, माया नाक से पकड़ती है, कान से पकड़ती, पछाड़ती है, और माया तो बहुत खुश होती है, बाबा के बच्चे मिले तो और क्या चाहिए उसको। तो इसलिए बाबा के टाइम पर जब आते थे तो बाबा बच्चों को बहुत प्यार से रिसीव करते थे। और बाबा कहते थे उस समय कि पूरे विश्व के अंदर सेंटर खोलेंगे। उस समय बाबा के टाइम पर केवल 25 सेंटर थे, 20-25 सेंटर थे पूरे भारत के अंदर। पूरे विश्व में कैसे खोलेंगे वो भी किसको पता नहीं था, लेकिन बाबा ने शुभ संकल्पों के जो बीज बोए हैं, वो शुभ संकल्पों के बीज से आज पूरे विश्व के अंदर कितने सेंटर, लगभग विश्व के 140 देशों में सेंटर हैं, 500 के करीब ब्रांचेस और छोटे छोटे सेंटर। भारत में गीता पाठशाला कहते हैं, उसको सब सेंटर कहते हैं, क्लासेस कहते हैं, तो 500 हैं। और भारत में तो गली गली में सेंटर है, बाबा कहते थे गांव गांव में सेंटर होगा, घर घर में सेंटर होगा, तो घर घर में ही देखते हैं अभी सेंटर है। और बाबा के टाइम पर प्रभात फेरी निकालते थे, अभी निकालते हैं आप लोग प्रभात फेरी हैं, अभी निकालते ना, तो बाबा के टाइम पर स्लोगन बनाए हुए थे, जागो जागो भगवान आए, है ना, तो गीत गाते थे हम लोग सब मिल करके, गीत गाते थे, स्लोगन करते थे तो बहुत अच्छा होता था। फिर दूसरी बात, बाबा के टाइम पर पहले तो प्रोजेक्टर होता था, फिर बाबा ने कहा ये प्रोजेक्टर क्या है, अंधकार में देख रहे, पता नहीं कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। बाबा ने कहा कोई नई इन्वेंशन होनी चाहिए। जब नई इन्वेंशन के बारे बात हुई तो दादी प्रकाशमणि और रमेश भाई और निवेद भाई, ये तीनों वहां पर बॉम्बे में थे, तो रमेश भाई और दादी प्रकाशमणि और निवेद भाई ने मिल करके नए प्लान निकाले और प्रदर्शनी का सेट बनाया। तो प्रदर्शनी जब शुरू किया, पहले यहाँ दिल्ली में किया, दिल्ली के बाद पंजाब में बोध किया था, हरियाणा में बोध किया था, हमें याद आता है हम करनाल से हैं, करनाल में थे तो वहाँ पर प्रदर्शनी करते थे, बहुत लोग आते थे और प्रदर्शनी भी करते थे, और उस समय ड्रामा भी करते थे, ड्रामा एक बनाया हुआ था स्वर्ग में एक सीट खाली, वो भी करते थे और बाबा को बताते थे और बाबा बहुत खुश भी होते थे। तो प्रदर्शनी पंजाब में बहुत चली, उस समय तो हरियाणा और पंजाब एक था, बाद में हरियाणा और पंजाब बना। और फिर बाबा ने कहा, बाबा को रमेश भाई ने कहा, जब बॉम्बे में प्रदर्शनी चली ना, बाबा को रमेश भाई ने कहा बाबा अब बॉम्बे में आओ। बाबा ने कहा ये शिव बाबा का रथ है, शिव बाबा डायरेक्शन देगा तो जा सकते हैं, क्योंकि बाबा अकेले नहीं जा सकते, शिव बाबा साथ में जाएगा। तो फिर शिव बाबा ने मना किया, नहीं आपको नहीं जाना है। वैसे सर्दी के टाइम बाबा जो है ना जाते थे बीच बीच में बॉम्बे, मम्मा भी जाती थी, दादियां भी जाती थी, बाबा भी जाते थे, लेकिन यहाँ पर जब इतनी ठंडी होती थी, कोई गर्म साधन नहीं थे, कोई एक गद्दा नीचे भी नहीं होता, एक दरी बिछी होती थी, बाबा आते थे ना एक छोटी सी राजस्थानी रजाई होती थी, ओढ़ के आते थे, और बाबा कहते देखो देखो गोदरी में लाल बैठा है, बाबा बहुत हंसाते थे, कहते देखो गोदरी में लाल बैठा, देखा है ना एक फोटो, बाबा ने ऊपर नेपाली और पत्र, वो शॉल ओढ़ी हुई है, कभी शॉल कभी वो हल्की रजाई वो ओढ़ी हुई थी। तो फिर बाबा ने कहा नहीं ये प्रदर्शनी माउंट आबू में ले आओ। तो ये प्रदर्शनी 1966 में मई जून का महीना था, यहाँ पर लेकर के आए थे, जो अपना आध्यात्मिक संग्रहालय है ना उसके सामने एक विश्राम भवन था, अभी तो बहुत बड़ा दुकान है जहाँ मेटेरियल कई तरह के मिलते, कपड़े ये वो, तो वो उसका उस समय विश्राम भवन था। उस समय बाबा ने सब दादियों को, सब महारथियों को बुलाया था, उस समय मनोहर दादी भी वहाँ करनाल में थी, उसको बुलाया। तो मनोहर दादी जब आती हैं, बड़ी दादियाँ आती हैं, तो साथ में किसी न किसी को लेके आते, तो मेरे को लेकर के आए, मैं उस समय कुमारी थी, छोटी थी, पढ़ाई करती थी, तो उस समय हम आए तो बाबा के पास। फिर उस समय क्या हुआ, दादियाँ जाती हैं तो दादियों के कारण हम सबको फायदा हो जाता है। अच्छा, दादी को बाबा बुलाते थे भोजन पर, बाबा के साथ बैठ करके भोजन करने का मौका मिला। फिर बाबा कभी कभी बैडमिंटन खेलते थे, जब बैडमिंटन खेलते थे बाबा तो इतने लंबे, पावरफुल डबल पावर। तो बाबा जब खेलते तो बाबा सदा जीत जाते थे, और ये जो शांति समय ना उधर खेलते थे बाबा, तो वहां पर उस समय बैडमिंटन खेलते थे। बाबा कहते थे ज्ञान जो है ना रमणीक है, जितना रमणीक ज्ञान ये है सतयुग में क्या करेंगे, नाचेंगे गाएंगे खाएंगे, पढ़ाई थोड़ी करेंगे, वहां तो ज्ञान होगा नहीं। वहां पर आप क्या करेंगे, पेंटिंग थोड़ी सी कर लेंगे, स्कूल में जाएंगे पढ़ लेंगे, एक पुष्पक विमान होगा बैठो सारा विश्व घूम के आओ। अच्छा सतयुग में सोनीपत होगा कि नहीं होगा, क्या नाम होगा सोनीपत, है क्या नाम होगा, है इंद्रप्रस्थ तो दिल्ली का नाम होगा नहीं ठीक बोला आपने, क्योंकि वो सारी दिल्ली सोनीपत ये सारा हरियाणा पंजाब सब एक बहुत बड़ा होगा और वो इंद्रप्रस्थ होगा, लेकिन वहां की भाषा भी अलग होगी। बाबा ने कहा यहाँ की ना संस्कृत भाषा होगी ना हिंदी होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो वहां तो पुष्पक विमान में बैठे और चारों तरफ उड़ेंगे। अच्छा माताओं को कितना बड़ा महल चाहिए, छोटा चाहिए बड़ा चाहिए, एक सोनीपत जितना चाहिए, पूरी दिल्ली जितना चाहिए या जयपुर जितना चाहिए, थक जाएंगे वह खाना बना के सफाई करके, हैं थक जाएंगे ना। अरे करना ही नहीं है, वहां तो रॉबोट आएगा करके चलिए, रॉबोट आपके लिए निकला है ना, रॉबोट आता फटाफट सफाई करता है, रॉबोट आता फटाफट करता है, और वहां फल फूल सब मिलेंगे, सब कुछ आराम से मिलेंगे, और वहां क्या करेंगे रास करेंगे ना। तो बाबा ने कहा ये ज्ञान जो है रमणीक है, बोर नहीं होना है, अंदर से दुखी नहीं होना है, अंदर से अपने आप को रंज नहीं करना है, सदा अपने अंदर खुश रहना है, खुशियां बांटते रहो। तो बाबा ये कहा, तो बाबा के पास जब हम आए तो बाबा यहाँ पर दादियां मिलती थी, उस समय बाबा के पास मिलते थे, खास जो दादी का कमरा वहां बाबा बैठते थे और सब दादियां और वरिष्ठ भाई बैठते थे, जैसे रमेश भाई है निवे भाई है सब बैठते थे। तो बाबा से प्रश्न पूछते थे, बताओ बाबा हमसे पूछे, बच्चे इतने रमणीक बाबा से प्रश्न पूछते थे, और बाबा तो बच्चों को फेल ही कर देते थे। कभी कभी बाबा बच्चों को ऐसे करते थे, कोई ऐसा जवाब दे देंगे बच्चे हंसते थे, बाबा से बहुत हंसते खेलते थे। फिर बाबा जब बैडमिंटन खेलते थे ना उस समय बच्चे हार जाते थे, तो एक बार बाबा ने क्या किया कि खुद जो है ऐसा खेल किया कि बाबा हार गए, तो फिर बच्चे खुश हो आज तो बाबा को हमने हरा दिया, आज तो हरा दिया। तो बच्चे कहते बाबा आज तो आप हार गए, बाबा ने कहा बाबा हार गए लेकिन बच्चे जो है बाबा के गले का हार बन गए। बाबा कहीं पर भी बच्चों को निरुत्साहित नहीं, अहंकार भी ना आए, उसके साथ साथ बाबा हमेशा ज्ञान की पॉइंट सुनाते थे। फिर बाबा के पास जब बच्चे आते थे उस समय तो मनोहर दादी के साथ हमने सारा बाबा के पास जाना, प्रदर्शनी में जाना, बाबा से मिलना। जब प्रदर्शनी किया था तो बाबा ने यहाँ माउंट आबू में प्रभात फेरी निकलवाई थी, हम सब छोटे बच्चे झंडे लेकर के खड़े थे जा रहे थे। फिर वापिस जब आए तो बाबा जो है ना गेट के पास एक जहाँ श्री कृष्ण का चित्र आप देख रहे हैं वो पहाड़ी है, तो उस समय बाबा के टाइम पहाड़ी थी, अभी भी पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर बना हुआ, बाबा उस पहाड़ी पर खड़े थे और गुलाब बाशी डाल करके हम सबका स्वागत किया। तो कितनी बड़ी भाग्य की बात है, हमने सब ने बाबा के सामने नारे लगाए गीत गाए, जैसे कई प्रभात फेरी में किया वैसे ही सारा किया। तो बाबा सब बच्चों को इतना भरपूर कर दिया, गुलाबाशी से भरपूर किया। तो बाबा ने कहा बच्चों के ऊपर गोल्डन पुष्पों की वर्षा हो रही है। तो बाबा हर बात के अंदर बच्चों को इतना भरपूर करते थे। फिर बाबा जो है छत पर गई, जो हिस्ट्री हॉल की छत है ना, तो एक फोटो आप देखेंगे चारों तरफ बैठे हैं ना, नीचे बैठे हुए बाबा मम्मा सब नीचे बैठते थे, बाबा बैठते थे एक तरफ, सब हम सब बैठते थे और वहां पर ही ब्रह्मा भोजन स्वीकार करते। हिस्ट्री हॉल की छत है, वहां तो अभी सोलार लगा दिया गया क्योंकि साधन बढ़ते जा रहे हैं तो इसलिए वो सब है, तो वहां पर हम सब मिलके करते थे। और फिर उस समय मई जून का महीना था तो बाबा रोज अमृत वेले योग के बाद, ये जो बाबा का ऑफिस है उसके बाहर बाबा खड़े होते थे, सब दादियां खड़ी होती थी, बाबा बिल्कुल एंजल की तरह आकर के निवे भाई के ऑफिस के बाहर खड़े होते थे और वहां पर आके खड़े होते, सबको दृष्टि से वरदान देते, फिर आगे बढ़ते। बाबा जो है हमारा जो ऑफिस है उसका थल्ला, वो पहाड़ी जो थल्ला है ना, वो पहाड़ी है, वो थल्ला नहीं, वो पहाड़ी, पहाड़ी को थल्ला बनाया है। तो वहां पर बाबा आकर के खड़े होकर के बच्चों को वरदान देते थे। और जो हमारा ऑफिस है वो बाबा के टाइम पर एक छोटा सा बगीचा था, वहां फूल थे, एक बगीचा यहाँ था, एक बगीचा वहां था। बाबा वहां आते थे, फूलों को लेते थे और फूल लेकर के बच्चों को भरपूर करते थे। फिर बाबा गेट के पास जाते और गेट के बाहर जाते और बच्चों को कहते, सब एंजल बन के सारे विश्व के अंदर फैलो, साकाश लो। ये सारा काम जो है बाबा ने पहले से ही किया है और करके दिखाया। ये केवल बाबा और दादियों की कमाल है जो उन्होंने करके दिखाया। आज हम सब बाबा और दादियों की त्याग तपस्या, उनकी पालना से आज हम सब लाभ ले रहे। किया उन्होंने, भाग्य कौन ले रहा। बाबा कहते हैं उन्होंने माखन निकाला, बाबा ने और दादियों ने बहुत मेहनत की, और माखन कौन खा रहा है, खाते जा रहे हैं तो क्या करेंगे। तो बाबा अभी समय अनुसार हमको दो तीन बातों का ध्यान खिंचवाते हैं। एक तो बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में भल रहते हैं, कर्म करते हुए अपनी आत्मा का भी भोजन को नहीं भूलना है। दूसरी बात बाबा कहते हैं समय जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार की बातें दिखा रहा है। इसके लिए मैं खास आप सबको बताऊंगी, कई ब्राह्मण आपको कई प्रकार के बताएंगे, यहाँ आ जाओ, मकान ले लो, समय आएगा आप यहाँ रहेंगे। आपको बाबा ने बता दूं, कभी किसी के प्रभाव में नहीं आना, किसी की सुनी सुनाई बातों के बारे में ना सोचना है, और कभी भी संकल्प नहीं करना है हम ज्ञान में देर से क्यों आए। बाबा हमेशा कहते हैं देर से आने वाले वो ज्यादा लाभ लेते, शुरू में आते तो बहुत मेहनत करनी पड़ती। देर से आने वालों को, लेट में आने वालों को बाबा क्या कहते हैं पता है, उनको कितना फायदा होता है। जैसे कोई सेल होता है ना, शॉप बाजार में जाओ तो वहां पर सेल होती है, 25% फ्री है ना, ऐसा होता है ना, 50% फ्री। तो बाबा कहते हैं जो लास्ट में आने वाले हैं वो सबसे आगे जाते, उनको एक तो बाबा की मदद, और दूसरा बाबा ने कहा है कि उनका भाग्य और चमकता है। बाबा ने कहा ना कि बच्चे जब याद करते हैं तो बाबा उनको मदद करता है, इसलिए लास्ट में आने वालों का भाग्य बड़ा है। तो इसके लिए पहले तो अपने भाग्य के नशे में रहो। दूसरी बात कि बाबा ने जो हमें समय की चेतावनी पहले से दे दी है कि समय भिन्न भिन्न खेल दिखाएगा, जिसके लिए बाबा कहते हैं अपनी पावरफुल स्टेज बनाओ। जो आपको यहाँ मधुबन के अंदर बहुत सुंदर चांस मिला है अपनी स्टेज को पावरफुल बनाने का और एक रस स्थिति बनाने का, कुछ भी हो जाए अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ना, ठीक है ना। कई घर की बातें आएंगी, कुछ आएंगी, अब देखो घर में होते आप कोई गाड़ी चलाता है, आंधी आई, तूफान आया, अच्छा गाड़ी चला रहे रास्ते में घोड़ा आ गया, अरे घोड़ा क्यों आया, अरे घोड़ा तो घोड़ा ही आएगा ना, आगे चल रहे हैं गाड़ी चला रहे हैं तो रास्ते में क्या होगा, पहाड़ी छोटा सा रेत का ठिल्ला आ गया, अब रेत का ठिल्ला आ गया तो क्या होगा, तो गाड़ी को मोड़ेंगे ना, साइड में करें, ऐसे ठिल्ले पे गाड़ी थोड़ी चला देंगे, ठिल्ले पे गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी पलट जाएगी। तो बाबा ने कहा ये छोटी छोटी बातें आएंगी, अभी कहीं आंधी आती है क्यों बोलेंगे आंधी आई, आंधी आई तो अपना बचाव करेंगे, कहीं बारिश आ गई तो अपना बचाव करेंगे, कहीं पर कुछ तो बारिश गर्मी आ गई तो अपना बचाव करेंगे ना, प्रकृति को दोष तो नहीं देंगे ना, पहले अपना बचाव फिर प्रकृति के लिए कुछ भी बोलो। तो इसलिए एक तो अभी समय अनुसार बाबा ने कहा है अपने संकल्पों को समेटो, इधर उधर की बातों में नहीं जाओ। जैसे आज भी बाबा ने कहा ना, कल भी मुरली में क्या कहा था, कोई कहते मेरे में मम्मा आया, बाबा आया, कभी किसी बात में नहीं जाना है, केवल बाबा की मुरली सुनो, योग करो, अपनी अवस्था को मजबूत रखो। और अभी समय जैसे दिखा रहा है ना, विश्व की हालत खराब है, तो अभी हमारी भी यहाँ पर मीटिंग्स चल रही हैं 3 दिन से, उसमें ध्यान दिया जा रहा है कि ज़्यादा घूमने फिरने का नहीं रखें, कईयों को तब विदेश जाए वहाँ नहीं जाए, अपने स्थान को मजबूत रखें और दूसरों की बातों में आकर के अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, जितना हो सके योग करें। अभी कुछ ही दिनों में सेंटर्स पर डायरेक्शन भी जाएंगे कि सेंटर पर तपस्या के साथ साथ छोटे छोटे प्रोग्राम करें, कभी कहेंगे बड़ा प्रोग्राम करें, ये करें, तो वो अभी थोड़े समय के लिए उन प्रोग्राम्स को दूसरे योग के रूप में परिवर्तित करें, खुद भी अनुभव करें, दूसरों को भी कराएं। तो इसलिए बाबा बच्चों को पहले से सावधान करते, दुनिया में कोई किसको सावधान नहीं करता, बाबा ने शुरू से कह दिया है, कोई भी परिस्थिति आ जाए घबराना नहीं। परिस्थिति है नहीं बच्चों के लिए, बच्चे तो फरिश्ता है, बच्चे तो फरिश्ता बन करके उड़ करके सारे विश्व को साकाश देंगे, इसलिए लौकिक परिवार को भी बहुत प्यार से योग के वाइब्रेशन दो, अलौकिक परिवार के साथ हंसते खेलते, क्योंकि ब्राह्मण जब बनते हैं ना तो ब्राह्मणों के बिना रह नहीं सकते। अगर ब्राह्मण ना मिले क्लास में आएंगे ना ब्राह्मण, अच्छा बैठेंगे आगे क्लास में, पीछे मुड़ मुड़ के देखेंगे, वो क्यों नहीं आया क्लास में आज वो, अरे तुम मुरली सुनो पीछे क्यों देख रहे, नहीं मैं देख रहा था आज वो भाई क्लास में नहीं आया। तो ब्राह्मणों के बिना नहीं रह सकते, ब्राह्मणों से मीठी मीठी बातें करते हैं और ब्राह्मणों की कंप्लेन भी बहुत करते हैं, करते हैं ना, वो कैसा खेल करते हैं, दो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्या होता है, दो बच्चे आपस में बैठते ना खेल करते करते लड़ते हैं, फिर लड़ते भी हैं, एक दो को दो चार थप्पड़ भी लगा देंगे, बच्चे आप नहीं बड़े नहीं, फिर 2 मिनट के बाद देखो वो दोनों आपस में खा रहे हैं, एक ही थाली में खा रहे हैं। तो बाबा भी कहते जो ब्राह्मण एक दूसरे ब्राह्मण के बारे में सोचते हैं कंप्लेन करते, वो तो जैसे कि छोटे बच्चे अभी तक बड़े नहीं हुए, और माँ बाप भी देख के खुश होते हैं, कहते देखो बच्चे आपस में खेल रहे हैं, खेल भी रहे हैं कूद भी रहे हैं, वो उसको लग रहा है, फिर माँ के पास जाए मम्मी इसने मेरे को मारा, वो कहेगी अच्छा इसने मारा, वो कहेगी नहीं नहीं इसने मारा। अब ये ब्राह्मण भी यही करते हैं, नहीं नहीं इसने ऐसा बोला था मैंने ऐसा बोल दिया, इसने पुरुषार्थ नहीं किया मैंने इसको देख के किया। अरे ब्राह्मण मीन्स ब्राह्मण, ब्राह्मण परिवार के बिना आप रह नहीं सकते, रहेंगे एक दिन आपको ब्राह्मण ना मिले, टीचर ना दिखाई दे तो संकल्प चलता है टीचर कहाँ गई कहाँ गई, आज ये क्लास में क्यों नहीं आया। ब्राह्मण परिवार ही हमारा ऊंच परिवार है, दैवी परिवार से ऊंच है, बहुत वैल्यूएबल है। ब्राह्मण परिवार में खुश रहो, खुशियां बांटो, ब्राह्मणों के गुण देखो और ब्राह्मणों के अंदर उमंग उत्साह दिलाते रहो और ब्राह्मणों को आगे बढ़ाओ, हाथ अंदर सूक्ष्म मन का हाथ में हाथ दे करके, जैसे बाबा के हाथ में हाथ दे के करते ना, तो ऐसे ही मन का हाथ बाबा के हाथ में दे करके। और बाबा को अभी आपको एक बात बताती हूँ, एक बार क्या हुआ, संदेशी गई बाबा के पास, बाबा के पास गई वतन में, सामने कर्टन था, बाबा को बोलती बाबा ये कर्टन लगा इसको खोलो ना पीछे क्या, बाबा ने कहा नहीं खोलूंगा, तो बोला नहीं बाबा खोलो क्या है, पीछे देखा तो बच्चे जो है तैयार हो रहे हैं, कोई मुकुट पहन रहा है उसका मुकुट इधर जा रहा है, जो हाथ की माला वो इधर जा रही है, कोई इधर माला को गले की माला को चुन चुन कर रहा है। बाबा ने कहा देखो, बाबा ने बच्चों को बच्चों का श्रृंगार किया, बाबा बच्चों को विश्व के सामने अपने परफेक्शन की स्टेज के द्वारा प्रत्यक्ष करना चाहते, लेकिन बच्चे ऐसे हैं सब साधन हैं लेकिन बिंदी कहाँ लगानी है, बिंदी लगानी है तो लगी है इधर, मुकुट कहाँ पहनना उसको पीछे डाला पड़ा है तो उसको देख के क्या लगेगा। कहती बाबा ये सब कार्टून है, तो बाबा ने कहा देखो अभी बच्चे विश्व के सामने प्रत्यक्ष होने हैं, लेकिन प्रत्यक्ष होने के लिए सिस्टमेटिकली जो बाबा ने कहा है उस विधि से अपनी योग में सिद्धि ले, और सिद्धि के बाद जो है वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहे। तो बाबा ने एक बहुत बड़ा इशारा दिया था कि बच्चे अभी समय है, बाबा ने सब कुछ दे दिया, बिंदु स्वरूप स्थिति में बैठो, अपने विश्व कल्याण का क्राउन पहनो, भविष्य नई दुनिया के आप होवनहार प्रिंस प्रिंसेस हैं, वो स्वरूप देखो और विश्व बाबा के राइट हैंड है उसका अभ्यास करो। फरिश्ता बन करके सारे विश्व के अंदर आप साकाश की किरणें फैलाओ, तो जैसे कि आप विश्व के सामने पूर्वज और ईष्ट देव बनेंगे। तो पक्का है ना? अच्छा, अभी मैं पूरा करती हूँ, फिर आप सबको अभी बाबा के घर से या सौगात मिलेगी, क्योंकि बाबा के टाइम से, शुरू से बाबा के टाइम से नियम रहा है बच्चों को सौगात देना। बाबा कभी कुछ देते, बाबा कहते थे बाबा के घर से सौगात मिलेगी तो मधुबन याद आएगा, तो मधुबन याद आएगा तो बाबा ने आज आपको सौगात मिलेगी बेडशीट, फिर बाबा देंगे टोली, है ना, टोली देते थे बाबा। अच्छा, बाबा जो है हमेशा कलाकंद खिलाते थे, पंजाब में क्या कहते हैं, बर्फी कहते हैं ना, हरियाणा में क्या कहते हैं, बर्फी है ना, इसको बर्फी कहते हैं ना, वो पतली पतली होती है। बाबा के पास आते थे ना बच्चे, बाबा कहते थे बच्चे मुंह खोलो, टोली आएगी, खोलो मुंह, किसके पास आएगी, भेजू डालू, हैं डालू भाइयों के पास में, लेकिन बाबा बहुत प्यार करते थे। बाबा कहते आओ बच्चे आओ, तो बाबा ऐसे कहते कहते मुंह खोलो, मुंह खोलते पहले बाबा मुंह में डाल के फिर बच्चों को हंसाते थे, कहते कभी कभी बाबा मुंह में टोली डाल के, बोलो अभी ओम शांति, बोलो अभी, बोलो बाबा बोलो मीठे, अरे मुंह में टोली कैसे बोलेगा, बाबा कहते थे बोलो बोलो मीठा बाबा मेरा बाबा, तो ऐसे बाबा बच्चों से बहुत खेल करते थे, बहुत प्यार करते थे।